आगे देखिए 155 से 163। अब यहाँ बेहतरीन खूबसूरत आयते हैं। शहादत कहे उल्फत में कदम रखना, शुहदा की बात हो रही है। पहले तो दिल की हजूरी से दुआ करें कि अल्लाह मुझे आपको शहादत की मौत मिले। अल्लाह ईमान वाली शहादत वाली जिंदगी देना और शहादत वाली मौत देना। सुनिएगा, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवातुम बल अहया। और अल्लाह तआला की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, लेकिन तुम नहीं समझते। और हम किसी ना किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करके रहेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और पलों की कमी से। और इन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। लिखिए आयत 155, मसाइबे खमसा, पांच मुसीबतें जो किसी ना किसी तरह से हर एक को मिलती है। मिनल खौफ वल जू व नक्से मिनल अमवाली वल अनफुसी बस समरात। तो आजमाइश तो आएगी, जैसे रोड पे निकलते हैं तो गाड़ियां तो होंगी, कोई इधर से आएंगी कोई उधर से, आपने खुद ही ड्राइव केयरफुली करना है। इस्लाम मुश्किलात मुसीबतों को आजमाइशों को रहमत बना देता है आपके मेरे लिए, जब हम उसमें सब्र से काम लेते हैं। क्या तरीका है उसका? 156, अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मलकियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं, इन पर इनके रब की नवाजशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। मुश्किल में अल्लाह की तरफ पलटना याद दिलाया जा रहा है। हम इस कलमे को सुनकर क्या करते हैं? मौत को याद करते हैं। कोई फोन कॉल सुने और एकदम पढ़े इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन तो क्या आता है दिल में? कोई फौत हो गया। हालांकि ये जिंदगी का कलम है। अपने आप को आईने में खड़ा करके कहें, इन्नी लिल्लाह, मैं अल्लाह की हूँ। हम सब अल्लाह के, उसी की तरफ लौट जाएंगे। देखिए दिल कैसे बदलता है। नबी की जिंदगी का तरीका ही ये था, जिसने जिधर जाना होता है ना उसका ध्यान उधर लगा होता है। पीछे वाले आपको याद कर करके रो रहे होते हैं, आपका ध्यान आगे होता है। जिन्होंने आपको लेने आना होता है वो खुश हो रहे होते हैं आप आ रहे हैं। जिस दिन मैंने अपने इस दुनिया से जाना है यही मामला होगा। इसलिए जिंदगी में इसको समझ लीजिए, सब्र के साथ जिंदगी गुजारिए, शुक्र के साथ गुजारिए। और सब्र की जहाँ बात हुई तो सब्र की एक जिंदा मिसाल बीबी हाजरा का तस्करा, इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह तआला की निशानियों में से हैं। इसलिए बैतुल्ला का हज और उमरा करने वाले पर इनका तवाफ कर लेने में भी कोई गुनाह नहीं। अपनी खुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह तआला कदरदान है और इन्हें खूब जानने वाला है। एक औरत का सब्र रंग लाता है। अल्लाह को एक औरत की अदा इतनी प्यारी लगी कि क्यामत तक के मर्दों को भी उसके नक्शे कदम पे चला दिया। सफर मरवा में जहाँ वो तेज चली आपको भी तेज चलना है, जहाँ वो आहिस्ता चली आपको भी चलना है। वो सफा से मरवा की तरफ गई तो आप भी सफा से मरवा की तरफ जाते हैं, और वो मरवा से सफा की तरफ आके रुक गई तो सात चक्कर आपके भी पूरे कर दिए। क्या अदा है! आज की औरत को भी इसी सब्र की जरूरत है। आज हम सिर्फ अपने बच्चों के पेट की पूजा करने की फिक्र करते हैं। हाय खाएंगे क्या, लंच तैयार है बेटा, आप क्या खाएंगे बेटा, आप ये करेंगे। हजरत हाजरा ने करके दिखा दिया कि जब वो अल्लाह के फैसले पे रजी तो बिल्लाही रब्बा कहती हैं और अल्लाह में जाया नहीं करेंगी कहती हैं, शौहर से शिकवा नहीं गिला नहीं, अल्लाह की रजा पे राजी थी, जमजम का वो चश्मा अल्लाह ताला ने जारी करवा दिया कि जो अभी तक जारी और जारी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। आपके मेरे बच्चों के कदमों से खैर के चश्मे क्यों ना निकले? क्या आपने मैंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की है कि उनसे भी खैर के चश्मे निकलें? इस वक्त दुआ कीजिए अपनी नस्लों के लिए। और चूंकि अल्लाह कदरदान है, कान अल्लाह खुश शाकिरन अलीमा, वो आपकी भी दुआ को सुनेगा। ऐ मालिक, मेरी इन सारी बहनों और साथियों की दुआओं को सुन ले, हमारी नस्लों से भी खैर के चश्मे फूटने लगे। आगे देखिए आयत 159, जो लोग हमारी उतारी हुई दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं बावजूद इसके कि हम इसे अपनी किताब में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं, इन लोगों पर अल्लाह ताला की और तमाम लानत करने वालों की लानत है। हाँ, मगर जो लोग तौबा कर लें और इसलाह कर लें और बयान करें तो मैं इनकी तौबा कबूल कर लेता हूँ, और मैं तौबा कबूल करने वाला और रहमो करम करने वाला हूँ। इन आयात पे हजरत अबू हुरैरा का कॉल मिलता है कि वो कहा करते थे कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं कोई बात बताऊं क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है, लेकिन फिर डर लगता है कि कहीं हक को छुपाने का मेरे ऊपर कोई गुनाह ना आ जाए, तो लिहाजा मैं बात को बताता हूँ, क्या पता चला, हक बात बताओ तो छुपानी नहीं चाहिए और ना बताओ तो बतानी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात इससे पता चलती है कि जो कुछ पिछली जिंदगी में हुआ, अगर उस पर तौबा कर लेंगे, अल्लाह ताला आपको इस्लाह की तौफीक भी दे देंगे। लेकिन अगर ये सब नहीं होता तो क्या होगा? आयत 161, यकीनन जो कुफार अपने कुफर में ही मर जाए, इन पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। ना इनसे अजाब को हल्का किया जाएगा और ना इन्हें ढील दी जाएगी। तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो बहुत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है। आइए गौर फिक्र करते हैं आयत 154 से 163 पर। आयत पर अमल कैसे करना है? अल्लाह तला से सच्चे दिल से शहादत की दुआ करनी है। और अल्लाह के नबी के साथी उमर फारूक क्या कहा करते थे? ए अल्लाह मुझे शहादत भी दे। और कहाँ दे? अल्लाहुम्मा अरज़ुकनी शहादतन फी बलदी रसूलिक। तो आप पर मैं दुआ करें कि अल्लाह अपने प्यारे नबी के शहर मदीना मुनव्वरा में शहादत की मौत नसीब करना। आमीन तो कह दीजिए। फिर इसी तरह से अमल कैसे करना है? कोई छोटी बड़ी मुसीबत भी आ जाए ना, तो उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहिए। एक साहबी का चिराग बुझ गया तो उन्होंने उस पर ये बात कही, तो लोगों ने कहा ये भी को मुसीबत है? कहा ये भी को मुसीबत है। कोई भी चीज़ जो आपको लगे अनयूजल हो गई, तो इन्ना लिल्ला पढ़ने की आदत डालिए। एक दुआ हदीस से मिलती है, हज़रत उम्मे सलमा को उनके शौहर अबू सलमा ने सिखाई थी, जो वो नबी से सीख कर आए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी। याद रखिए दोनों तरफ से आता है, अजुरनी भी आता है और अजिरनी भी आता है। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अख्लिफली खैरम मिनहा। ये दुआ मांग लें तो ना सिर्फ यह कि आखिरत में बदला मिलेगा, बल्कि दुनिया में भी उसका बेहतरीन बदला मिलेगा। उम्मे सलमा ने इद्दत के दौरान ये दुआ मांगी और अल्लाह ने उनको नबी सल्लम की सौजियत में दे दिया। आप मैं पूरे यकीन के साथ किसी भी तकलीफ पे पड़े, मुझे तो अल्लाह का शुक्र है जिंदगी में आज तक कोई अल्लाह ने तकलीफ दी नहीं, कभी आई होगी तो महसूस ही नहीं हुई। ये अल्लाह का खास करम है, उसकी नेमतें हैं, उसका रहम है। लेकिन यकीन कीजिए इस दुआ पे अंधा एतमाद है। मुझे किसी की को बात भी बुरी लगे ना, मैं खामोश रहती हूँ और मैं अपना मामला अल्लाह के सामने डाल देती हूँ। फिर अल्लाह जो उसके बदले में देता है वो कभी सोचा भी नहीं होता। तो आप अपने बच्चों के गम, शौहरों की तरफ से आजमाइशें, घर वाले भाई बहनों जो भी आती है ना, उसके लिए इस दुआ को याद कर लीजिए। कुरान पाक से रहनुमाई क्या है? मसाइब पर सब्र करने से अल्लाह के यहाँ मोमिन का दर्जा और मुकाम बढ़ जाता है। लिहाजा हमने भी अगर कोई मुसीबत हम पर आए तो सब्र से गुजारिए। जुमला लिख लें, जम बना दें, सब्र सब्र से आता है। हम सब्र मांगते हैं बेसब्री के साथ। चुलबुलापन अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। हाइपर होके, जज्बाती होके, फौरन टिक टिक टिक, मैसेज पे मैसेज, जवाब पे जवाब, ये क्या वो क्या, ये बेसब्रापन अल्लाह को पसंद नहीं है। अपने तो ठहराव लाइए। एक और जम लिख लीजिए, इल्म के साथ जब हिल मिलता है तो हिकमत मिलती है। आज इल्म का तो पहाड़ बने बैठे हम, हिल्म जरा नाम का नहीं है। ऐसे तन बदन में हमारे आग लगती है किसी बात को सुन के, नाव देखते हैं ना ताव देखते हैं, इसको भेज उसको भेज, ये कर वो कर। कोई बात नहीं, आपका नसीब, आपको जो मिलेगा। तो कुरान पढ़े हुए लोग ऐसे नहीं होते। किरदार लाइए जिससे हो जिगरे लाला में ठंडक। अपने अंदर इतनी ठंडक लाएं कि लोग आपका हाथ पकड़ें तो उनका छोड़ने को दिल ना करे, आपको देखें तो लोगों की थकन दूर हो जाए। आज हम दीन के नाम पे कितने हवनक दिखते हैं, कभी सोचा आपने? कितनी छिछोरी हरकतें करते हुए दिखते हैं, कभी सोचा आपने? कभी आपने देखा कि लोग हमें किस रंग में देखते हैं? और खास तौर पे भी जब हम गैरों के बीच में, और जब इस्लामिक हाल हुलिये में मुसलमान रंग रूप में हम उछला कूदी कर रहे होते हैं, अल्लाह को अच्छा नहीं लगते? तो तहम्मुल आइए, सुकून से नमाज पढ़े, ऐसी ही पढ़े कि उसको देख के दूसरों को भी अच्छा लगे। बात करें, आपकी बात सुनकर लोगों का दिल करे सुनते ही जाए। आम तौर पे जो घर वालों से हमारी टोन होती है, जरा उसको नोट कीजिए। फिर इसी तरह आलिम हक के लिए हर इस्तगफार वाल करने वाला इस्तगफार करता है। तो हक के आलिम बनिए ताकि आप फरिश्तों की भी दुआएं लें और इंसानों की भी दुआएं लें। गौर व फिक्र के नुक्ते, शहीद आखरत की सादत से सुरखरू होता है। देखिए मौत का लफ्ज़ किसी को अच्छा नहीं लगता, शहीद के लिए अल्लाह ने जिंदगी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कब्र के अजाब से हर एक डरता है, शहीद के लिए कब्र का अजाब नहीं है। सीधी रूह निकली और जन्नतों में पहुंचा दी, अल्लाह मुझे आपको शहादत की मौत नसीब करे। महबूब जिंदगी छोड़ने पर कहीं ज्यादा कामिल और अजीम जिंदगी मिल जाती है। आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आते हैं ना, इधर आते रह गए और शऊर से यार वक्त पे यार जैसे माशाल्लाह जज्बे से सुन रहे हैं आप। देखिए दौरे कुरान के बाद आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। ये मेरी बातें झूठी नहीं है, लिख के रख लें। जो कुरान को आप आज वक्त दे रहे हैं, जो स्किल दे रहे हैं, और मैं घर से हमारे जितने एडमिन्स हैं इस वक्त भी हमारे साथ, जो बाद में भी रिप्लेस करते हैं और जो एडिट करते हैं और जो कुछ भी करते हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करूंगी कि जिस डेडिकेशन से वो इस पैगाम को दिन रात हमारे साथ फैला रहे हैं, अल्लाह उनके सारे कामों को अपने हाथ में ले ले, और अल्लाह उनके बच्चों को उनकी आंखों की ठंडक बना दे, और अल्लाह उनके सारे हम और गम दूर कर दे। तो इस पैगाम को फैलाने में मुआविन बनेंगे तो आपको फरिश्तों की और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी मदद मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। वक्त भी मिल जाएगा, खाने भी पक जाएंगे और इफ्तारियां भी बन जाए, कभी भूखे नहीं रहे। अल्लाह की रहमत से ये 23वां दौरे कुरान है जिंदगी का। किसी रमजान में हमारा चूल्हा बंद नहीं हुआ हुआ कि हम भूखे रहें क्योंकि दौरे कुरान करा रहे हैं। हमारे एडमिन्स मेरे से कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। ये जो कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये मैंने तो नहीं बनाया, ठीक है मैंने उनको चीजें बता दी होंगी लेकिन डिस्प्ले उन्होंने किया है, तो ये टीम वर्क का है। और याद रखिए जब उम्मत वसत बन के टीम वर्क के साथ काम करेंगे उसके आगे मुखालफतें ऐसे दम दबा के भाग जाती हैं। जितने लोग इस वक्त इस पैगाम को फैला रहे हैं ना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे इस पैगाम को खत्म करने की कोशिशें करने वाले 10 गुना भी ज्यादा हो जाए ना, तो नहीं कर सकेंगे। ये मेरा ईमान है, हक के आगे बातिल की आंधियां नहीं चलती। तो जितना ज्यादा आप अपना कंफर्ट जोन छोड़कर अल्लाह के दीन को सर्व करते हैं, आपके काम अल्लाह ले लेता है। जिंदगी में गम और खौफ ही कोई नहीं, फिक्र ही कोई नहीं, सिर्फ इस चीज का फिक्र है कि अल्लाह तेरी नजरों में कबूलियत हो जाए। फिर लिखिए एक जुमला, हम अल्लाह के गुलाम हैं, हमारा अपनी जानों और मालों पे कोई इख्तियार नहीं। हर वक्त मेरी मेरी करते हैं ना, माई माई माई, मेरा पेन, मेरी गाड़ी, मेरा फोन, ये मैं बकरी को अच्छा लगता है। बोलिए इन्नी लिल्लाह, अल्लाह का है ये सब। अपने आप को ओन ना करें, अल्लाह आपको ओन करता है। शुक्र करें जुबान चल रही है, कान सुन रहे हैं, इसी पे शुक्र कीजिए। इसी तरह अच्छे और बुरे लोगों के दरमियान फर्क हिकमत इलाही का तकाजा है। हम जितना अल्लाह से डरते रहेंगे, अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत होता जाएगा, उतना आप देखेंगे कि लोगों को भी बढ़ने लग जाएंगे। हिकमत मांगिए, हर बात सच नहीं होती, हर चीज ठीक नहीं होती। अल्लाह से कि अल्लाह मुझे अक्ल दे, समझ दे, फहम दे, मैं अपने ही पाँव पे खुद कुल्हाड़ी ना मारूं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक नया बाब खुल जाएगा और आप अपने फैसले बहुत खूबसूरत करने लगेंगे। 164 से 169 बहुत प्यारी आयत से बात शुरू हो रही है, इसको आयतुल आयत कहते हैं। आयत 164 को अभी गिनिएगा, एक आयत में 7 बड़ी बड़ी कायनात की निशानी है। एक कुरानी आयतें होती है कौन, यानी यूनिवर्सल साइंस, इसमें आप गिनेंगे। इन नफी खल्क समावाती वल अर्दी वख्तिलाफ लैली वन नहारी वल फुल्क लती तजरी फिल बहर, आसमानों और जमीन की पैदाइश, रात दिन के हेर फेर, कश्तियों का लोगों को नफा देने वाली चीजों को लिए हुए समंदरों में चलना, आसमान से पानी उतार कर मुर्दा जमीन को जिंदा कर देना, इसमें हर किस्म के जानवरों को फैला देना, हवाओं के रुख बदलना, और बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान मुसख्खर हैं, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत की निशानियां हैं। बस लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहरा कर इनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश के मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह के अजाब को देख कर जान लेंगे कि तमाम ताकत अल्लाह ही को है और अल्लाह ताला अजाब देने वाला है। ये है मेराज, अल्लाह की मोहब्बत में बंदा मोमिन सबसे ऊपर चूर हो जाता है अल्लाह की मोहब्बत में। खुद से पूछिए मेरे दिल में किसकी मोहब्बत है, अल्लाह की के दूसरों की? बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ, आज ही आपने सुन लिया। ये बुत है, पत्थर भी बुत है, हीरा भी बुत है, डायमंड्स भी बुत है, सोना भी बुत है, चांदी भी बुत है, फर्नीचर भी बुत है, ये लकड़ी के बुत हैं, कोई शीशे के बुत हैं। हमारी मोहब्बत अल्लाह के लिए खास होनी चाहिए, इसलिए क्यामत के दिन के हसरतों से बचते हुए आज दुनिया में दिल को सारी मोहब्बतों से बेनियाज करके अल्लाह ताला को अपना महबूब बना लें। वरना क्या होने वाला है। I-166 को सुनते वक्त आपने पाकिस्तान, इंडिया या कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी बांग्लादेश में भी हूँ। मैं नहीं जानती बांग्लादेश के बारे में कुछ भी, हाँ पाकिस्तान इंडिया के बारे में कुछ जानती हूँ। आप इस आयत को जो मैं अभी पढ़ने लगी हूँ सुनते हुए किसी दरबार को जहन में लाइएगा, कब्र को लाइएगा, जहाँ लोग उर्स कर रहे, जहाँ मेले ठेले लगा रहे, जहाँ रुकू हो रहे, कब्रों को सजदे हो रहे, और फिर सुनिएगा कि क्यामत के दिन ऐसे लोगों के साथ क्या होने वाला है। जिस वक्त पेशवा लोग अपने ताबेदारों से बेजार हो जाएंगे और अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे और कुल रिश्ते नाते टूट जाएंगे, और ताबेदार यानी जो मुरीद थे, ये पीरों और मुरीदों की कहानी हो रही है इसमें, और ताबेदार लोग कहने लगेंगे काश हम दुनिया की तरफ दोबारा जाएं, तो हम भी इनसे ऐसे ही बेजार हो जाएंगे जैसे ये हमसे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला इन्हें इनके अमाल दिखाएगा, इनको हसरत दिलाने को, ये हर किस जहन्नम से नहीं निकलेंगे। आज दुनिया में एक रब को पुकार लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं ना, तो मदद भी उसी से मांगे। बेटा लेना है तो अल्लाह देगा, औलाद लेनी है अल्लाह देगा, बेटी का रिश्ता देना है तो अल्लाह ने देना है, मियाँ साहब की जॉब देनी है तो अल्लाह ने देनी है। हर तरह के माजी के शिर्क से तौबा कीजिए। कुरान का तो सिर्फ तर्जुमा ही हमारे अकायद की इसलाह करने के लिए काफ़ी है, इसीलिए शैतान फिर ये करवाने नहीं देता। रंग बिरंगे तरीके से कुरान हम पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह नहीं पढ़ते कि जिससे हमारे अकायद की इसलाह हो। दूसरी जो चीज़ बहुत आम है वो क्या है, रिस्के हराम। हलाल को छोड़कर हराम पे लाता है शैतान, उसका तज़किरा आयत 168 में, लोगों ज़मीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें इन्हें खाओ पियो और शैतानी राह पर मत चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का और अल्लाह ताला पर इन बातों के कहने का हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं। स्टेप्स हैं, शुरू में इंसान शैतान की बात मानता है, फिर वो उसको बुराई करवाता है, फिर बेहयाई कराता है, फिर जुबान खुलती है, फिर अल्लाह के बारे में नाहक बातें करके इंसान अल्लाह की नज़रों में गिर जाता है। क्या पता चला? आयत 164 से 169 पे तदब्बुर और अमल में देखते हैं आयत पर अमल कैसे करना है। अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत बयान करने के लिए किसी मखलूक के फवायद ढूंढिए, यानी अल्लाह की कायनात की चीज़ें देखी है ना, 7 निशानियां हैं, कश्ती के क्या फ़ायदे हैं, गौर कीजिए, कैसे इतनी बड़ी नहीं डूबती, कैसे मनोटनों बदन को लेके चलती है, इसी तरह आसमानों को देखिए, इतना बड़ा आसमान कैसे खड़ा है, गौर कीजिए। आज हमारे अंदर गौर नहीं है, तो तदब्बुर वल अमल ये उन 5 में से 2 चीज़ें हैं जिससे आज उम्मत मुस्लिमा थोड़ी दूर है। हाँ, हिफ्ज़ और कुरान की तिलावत के ऊपर अल्लाह का शुक्र है अभी हमारे दिल मुतमईन है। इसी तरह कुरान पाक से अल्लाह ताला के 3 पसंदीदा अमाल को ढूंढिए और उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए, तभी तो फिर नेकियों में आगे बढ़ेंगे। किसी खाए जाने वाली चीज़ की हुरमत के फतवे में काहली और गफलत बरतने वालों को ये पैगाम दीजिए कि पेट में अगर एक हराम का लुकमा चला गया तो इबादत कबूल नहीं, दुआएं कबूल नहीं, और औलादें बिगड़ जाती हैं। रिस्क हराम का असर औलादों की नाफरमानी की सूरत में आता है। अल्लाह सबको हलाल रिस्क की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक से रहनुमाई क्या है? मखलूक की मोहब्बत में हद से तजावुज़ करना शिर्क बन जाता है, इसलिए मखलूक को उसकी जगह पे रखना है और खालिक को उसका मुकाम देना है। कसरत से अल्लाह का जिक्र करना उससे शदीद मोहब्बत की दलील है। दुनिया में जिससे मोहब्बत होती है उसके बारे में हम क्या कहते हैं? हर वक्त उसकी बातें नहीं होती, घर में एक बच्चा होता है, हर बंदा उसकी बात कर रहा है, तो अल्लाह से मोहब्बत हो गई तो फिर अल्लाह का जिक्र जुबान पे होगा, उठते बैठते। आप देखिए बंदे मोमिन की तो डिक्शनरी में लफ्ज़ अल्लाह कितना है, सुबह उठे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना, उठकर वॉशरूम की तरफ चले तो बिस्मिल्लाह ही अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, बाहर निकले तो गुफरानक, हाँ आईना देखा तो उठे घर से निकले बिस्मिल्लाह ही तवक्कल। तो एक एक चीज आपको बता रही है कि आप रब के जिक्र के साथ अपना दिन गुजारते हैं। फिर दूसरी बात क्या है? हराम गिजा शैतान का इब्तदाई हमला, इसको लिखिएगा। सबसे पहला हमला जो शैतान ने किया था ना, वो उस दरख्त का फल चखवाया था आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को, जिससे मना किया गया था। तो रिस्क हराम का आना शैतान के काम को आसान कर देता है, इसलिए हमेशा हर लुकमे के लिए केयरफुल रहिए कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैंने कैसे क्या खाना है क्या नहीं खाना, और अपने आप को अल्लाह ताला के साथ बेहतरीन तरीके से जोड़ते रहिए ताकि आपकी दुआएं भी कबूल हों और आपकी इबादत भी कबूल हों। फिर इसके बाद गौर व फिक्र के चंद पॉइंट हैं। कश्तियों को मुसख़र करने में अल्लाह ताला की निशानी है, ये अपने भारी वजन के बावजूद पानी पर ठहरी रहती है। किसने पानी को हुक्म दिया कि इस कश्ती को नहीं डुबोना? अल्लाह ने। तो आप क्या दुआ करें, अल्लाह ये कश्ती पानी पे खड़ी हो जाती है ना, मुझे अपने दीन के लिए खड़ा कर दे, इस्तकामत दे दे, हक बात के लिए मैं खड़ी हो जाऊं। हवाओं का रुख बदलने में अल्लाह की अजमत और कुदरत की क्या निशानी है कि अल्लाह तू मेरी जिंदगी का भी रुख बदल सकता है, नाफरमान दिल को फरमाबरदार बना दे, मेरी जिंदगी में कुरान की मोहब्बत डाल दे, मेरा दिल दुनिया से निकाल कर आखिरत की तरफ डाल दे। इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत जब दिल में बस जाती है तो अजाब और इसके असरात मुख्तलिफ शक्लों में नजर आते हैं, और वो कैसे, बंदा पूरे का पूरा अल्लाह के रंग में रंगने लगता है। जिससे मोहब्बत होती है ना, बंदा उसकी नजरों में जचना चाहता है। दुआ कीजिए कि हमें अल्लाह से ऐसी मोहब्बत हो जाए कि हम पूरे के पूरे बदल भी जाएं और उसके रंग में रंगे जाएं। इसी तरह अजाब देकर मुशरिकीन के माबूद अपने पीछे चलने वालों से बरात और बेजारी का इजहार करेंगे। अल्लाह ताला हमें दुनिया में ही ऐसी चीज़ों से बेजार कर दे। अपने प्यारे रिश्तेदारों में अगर किसी में कोई शिर्क का शायबा दिखता है, अभी से उनको वॉर्न कीजिए, प्यार से बात करें। याद रखे लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आपने उनको वो बात क्यों बतानी है, कैसे बतानी है, ताकि उसको भी बचा ले और खुद भी बचे, लेकिन टोंट का अंदाज नहीं, तंज का नहीं, छिड़की का नहीं। कुछ लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे वो आप उनके कोई गुलाम है। छिड़कियां, डांटना, दबकना, अंदाज दुरुस्त करो। कई लोग अपनी मेड्स को डांट रहे होते हैं, नहीं, प्यार से बात कीजिए, बात ठीक कीजिए, अंदाज सही रखें। जैसे इंजेक्शन लगाने वाला टीका तो सही लगाएगा लेकिन हाथ नरम रखेगा। अल्लाह करे कि हमें अल्लाह ताला नरमी अता फरमा दे। इसके बाद आयत नंबर 170 से 176, व इज़ा क़ील लहुम उत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना। या फिर आपको हिंट दे देती हूँ, अबा परस्ती। हमारा भी इंडो पाक कल्चर का प्रॉब्लम है, ख़ानदान परस्ती, बिरादरी परस्ती, फैशन परस्ती और लोगों की परस्तिश करते हैं। क्या हाल होगा ज़रा सुनिए। और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो इस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया, गो इनके बाप दादे बेअक्ल और गुमराह करदा हों। कुफार की मिसाल इन जानवरों की तरह है जो अपने चरवाहे की सिर्फ पुकार और आवाज़ को ही सुनते हैं, समझते नहीं वो बहरे गूंगे और अंधे हैं, इन्हें अक्ल ही नहीं। आज हमारा भी क्या हाल है, आज हमारे पास कौन सा दीन है आपको पता है? सुना सुनाया खिलो काल, लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, वो फलां क्या कहेगा। तो कुरान और सुन्नत का इल्म लेंगे इंशाअल्लाह ताला, आहिस्ता आहिस्ता हमारी रसूमात भी बदलती जाएंगी, हमारे अकायद भी दुरुस्त होते जाएंगे। आगे मुसलमानों को, ईमान वालों को मुखातिब करके हलाल चीज़ों के करने और खाने का हुक्म दिया जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी हैं इन्हें खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र करो। अगर तुम खास उसी की इबादत करते रहो, तुम पर मुर्दार और बहा हुआ खून और सूअर का गोश्त, चार चीज़ें इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, सूअर का गोश्त और हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरों का नाम पुकारा गया हो हराम है। फिर जो मजबूर हो जाए और हद से बढ़ने वाला, ज्यादती करने वाला ना हो, तो इस पर इनके खाने में कोई गुनाह नहीं, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। पूरी शरीयत में ये चार चीज़ें हराम है, इसको देख लीजिए। मैता, मुर्दार यानी वो जानवर जिसको ज़िबा ना किया गया और वो कुदरती तौर पे मर जाए, खून बहता हुआ, दमम मसफूहा का लफ्ज़ सूरत अनाम में पढ़ेंगे। फिर माँ उखिल्ल बिही लि गैर अल्लाह, गैर अल्लाह के नाम का ज़बीहा, इसमें वो सब नज़रो न्याज आ जाती है जो अल्लाह के सिवा किसी के नाम पे दी जाए, नजराने और ऐसी चीज़ें, इस पे भी इल्म लेने की ज़रूरत है। हमारे कल्चर में ये भी चीज़ बहुत आम है। और इसी तरह लहमल खिंजीर, इससे तो उम्मत मुस्लिम अभी तक बचती है। इवन वेस्ट में भी मैंने नहीं देखा कि लोग खिंजीर का गोश्त खा लें, बहुत नफरत है इसके लिए, शुक्र है दिलों में, अल्लाह करे आगे भी कायम रहे। तो इन चार चीज़ों को छोड़ दीजिए, बाकी सब हलाल है। असलुल अशियाई बाहतुन, अगर अल्लाह चार चीज़ें हलाल कर देता और बाकी हराम करता तो क्या होता। और आप तो खुशकिस्मत है, मुसलमान मुल्क में, इतने प्यारे मुल्क में, यहाँ खाने की कितनी कसरत है, आपको कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की जरूरत पड़ी? अल्लाह का शुक्र है सऊदी हुकूमत ने कितना चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़िए, बाहर के लोग जो मुश्किलों में पड़े रहते हैं पहले चीज़ों को पढ़ते हैं फिर खाते हैं, कई चीज़ें लाला के ज़ाया होती होंगी उनकी कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं है, तो बोलिए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इतने प्यारे मुल्क में रखा हुआ है, इसका हक अदा कीजिए। आगे देखिए, हक को छुपाने की सज़ा, बेशक जो लोग अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब को छुपाते हैं और इसे थोड़ी थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं, यकीन मानो कि अपने पेट में आग भर रहे हैं, क्यामत के दिन ना तो अल्लाह ताला इनसे बात करेगा ना इन्हें पाक करेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह मला तजलना मिनहुम, अगर आप वाकई वल्लज़ीना शद्दू हुब्बल्लाह में आती है ना, तो आप तो सुन के रो पड़ेंगे, अल्लाह जी आप मुझसे बात नहीं करेंगे? सबसे बड़ी किसी को सजा देनी हो ना तो उसे बात ही ना करें। अल्लाह ना करे कोई ऐसा अमल हमारे आमाल नामे में दिखे कि हमें इस सजा के मुस्तहिक होना पड़े। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले और अजाब को मगफरत के बदले खरीद लिया। ये लोग आग का अजाब कितना बर्दाश्त करने वाले हैं। इन अजाबों का बायस यही है कि अल्लाह ताला ने सच्ची किताब उतारी और इस किताब में इख्तलाफ करने वाले यकीनन दूर के खिलाफ में हैं। तो अल्लाह में हक बात को छुपाने वाला नहीं बताने वाला बना दे। तदब्बुर और अमल 170 से 176 तक देखिएगा, आयात पे अमल कैसे करेंगे, अपने साथियों को अंधी तकलीद को छोड़ने और सही दलील की पैरवी करने की नसीहत कीजिए, लेकिन फिर कहूँगी आराम से। आपकी वो दोस्तें जो भी कुरान नहीं सुन रही, आपके वो रिश्तेदार जिन तक कभी अल्लाह के रसूल का पैगाम नहीं पहुँचा, आप कह लीजिए कि ना समझिए ना, जानबूझ के तो गलत काम कोई नहीं करता, तो कोई भी आपकी दोस्त है अगर वो कोई ऐसा काम करती हैं जो कि अल्लाह रसूल ने नहीं कहा, तो प्लीज आप उनको बात जरूर बताएं, लेकिन कैसे बताएंगे, इज्जत से। किसी की इज्जत है नफ्स को मजरू करके आप उससे क्या नहीं कर सकते, मोहब्बत नहीं ले सकते, वो आपकी चिढ़ में काम नहीं करेगा। कुछ लोग बात बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं लेकिन अंदाज गलत होता है, दूसरी बात है मौका गलत होता है। किसी की बेइज्जती करके आप उससे इज्जत लेंगे, बीच महफिल में आप टोक रहे हैं किसी को, वो उसको जहन्नमी कह रहे, उसको बुरा कह रहे, तो क्या वो आपकी बात मानेगा? तो मोहब्बत से बात कीजिए। फिर अगली बात है कि खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र शऊर से अदा कीजिए। बहुत से लोगों को आप जैसा खाना मुयस्सर नहीं है, तो आज क्या खाया था सोचिए, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हम इस काबिल थे जो हमने खाया? हलाल और हराम खानों के मुतल्लिक लोगों में शऊर और आगही के लिए काम कीजिए। कुरान पाक से रहनुमाई कैसे लेनी है? मोमिन किताबो सुन्नत की सही दलील को मानने का हरीस होता है। एक दफा पता चल जाए अल्लाह का हुक्म है, फिर नहीं पीछे होगा। शुक्र इबादत है, इसको समझिए और ये शुक्र के हरीस बनिए। अक्सर लोगों में जो कमी मुझे नजर आती है वो शुक्र की है। सब कुछ है दिया अल्लाह का, लेकिन हमें तौफीक नहीं है शुक्र की। अल्लाह ताला हमें शुक्र वाला बना दे। हलाल खाने पीने में अल्लाह की रहमत होती है। गौर व फिक्र की चंद बातें, गलत तकलीद में मस्त लोग अपनी गुमराही पर जमे रहते हैं। वो तिलावत की आवाज़ सुनते तो हैं लेकिन उनके दिल साथ नहीं होते। आप जब भी कभी कुरान पाक को सुने ना, तो उसमें से एटलीस्ट उर्दू के कुछ लफ्ज़ समझने की कोशिश किया करें। नेमतों के जिक्र के बाद शुक्र अदा करने का हुक्म हमें क्या बताता है? कि जिस तरह से दुनिया में कोई चीज़ लें तो उसका बिल दिया जाता है, बिजली इस्तेमाल करते हैं तो बिल आता है, खाना लेते हैं तो बिल आता है ना, तो शुक्र करना नेमतों का बिल देना। आप शुक्र करते जाइए, अल्लाह को आपसे कुछ और नहीं चाहिए। नेमत की शुक्रगुजारी ये है कि जितनी हो जैसी हो वैसी जाहिर की जाए, यानी छूटा तसन्नो ना करिए, और नहीं है तो कह दीजिए नहीं है। झूठी इज्जत के नाम पे कर्ज ले लेकर अपने नाम पे इज्जत के ठप्पे लगाते हुए कर्जों के बोझ में मत दबिए। दीन आसान है, इसलिए मजबूर आदमी के लिए हराम की पाबंदी उठा ली गई। इससे शरीयत का मिजाज समझिए और इस पे गौर व फिक्र कीजिए। हक छुपाने वालों को अल्लाह ताला पाक नहीं करेगा, लिहाजा दुनिया में ही हक का साथ दीजिए। रिश्वत लेने वाला अपनी भूख और लालच के बदले अपनी आखरत बेच देता है। अगर किसी को रिश्वत का कोई लेन देन करता देखें तो उसको ये नुक्ता समझाइए। आगे आ रही है जी आयते बिर, तवील आयतों में से एक आयत है। सूरह बकरा की खूबियों में ये खूबियाँ हैं। तो 177 एक आयत अच्छी खासी तवील है और उससे लेके 181 तक सुनेंगे। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वमलाइकति वल किताबि वन नबीय्यीन। और यहाँ से मैं रोक के आपको थोड़ा सा पॉइंटर दूँ। इस आयत से पीछे पीछे का पारा 1 और सूरह बकरा के ये चंद रुकू जब हमने पढ़े, ये पिछली उम्मत के हालात और उसके बाद इंटरचेंज था, किबले की तब्दीली। आपने जब भी सुना, जो रिएक्शन उठा, जो भी बातें, अब आयते बिर से आगे सूरत बकरा के एंड तक उम्मत मुस्लिमा को खिताब किया जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि अब आपने मैंने ज्यादा गौर से सुनना है। ये आयते बिर है, इसके बाद एक एक चीज अलग आएगी, आप देखेंगे। इवन ये एंड पे तलाक और इद्दत और कई मसाइल, और फिर तीसरे पारे में सदका, खैरात, सूद, ज़कात, ये क्या बता रहा है कि उम्मते मुस्लिमा को अल्लाह ताला एक पूरा पैकेज दे रहे हैं डूस एंड डोंट्स का। ठीक है, अब इस तमहीद के साथ सुनिए। सारी अच्छाई मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करने में ही नहीं, बल्कि हकीकतन अच्छा वो शख्स है जो अल्लाह ताला पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताबुल्लाह पर और नबियों पर ईमान रखने वाला हो, जो माल से मोहब्बत करने के बावजूद किराबतदारों, यतीमों, मिसकीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वालों को दे, गुलामों को आज़ाद करे, नमाज की पाबंदी और ज़कात की अदायगी करे, जब वादा करे तब उसे पूरा करे, तंग दस्ती, दुख दर्द और लड़ाई के वक्त सब्र करे। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेजगार हैं। कितनी लंबी लिस्ट है आपके पास। फर्स्ट कम फर्स्ट, ईमान बिल्ला से शुरू करके ताल्लुकात की इस्लाह तक की बात कर दी, अखलाक को बीच में कर दिया, इसी तरह इबादात को कर दिया। इसको आप इस्लाम ए टू जी भी कह सकते हैं। पहले अकायद की इस्लाह कीजिए, फिर इबादात को बेहतर कीजिए, फिर मामलात और अखलाकियात पे चलते जाइए। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खराबियों से बचा लेगा। इसके बाद अब एक एक करके अलग अलग नेकियां आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले कसास। कसास क्या होता है? ब्लड मनी। कोई किसी को कत्ल करे तो उसके बदले में क्या होगा, सुनिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, तुम पर मकतूलों का कसास लेना फर्ज किया गया है, आज़ाद आज़ाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले, औरत औरत के बदले। हाँ, जिस किसी को इसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी दे दी जाए, इसे भलाई की तबाह करनी चाहिए और आसानी के साथ दियत अदा करनी चाहिए। तुम्हारे रब की तरफ से ये तख़फीफ यानी कमी और रहमत है। इसके बाद भी जो कोई सरकशी करे तो उसे दर्दनाक अज़ाब होगा। अक्लमंदो, क़िसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, इसके बायस तुम कत्ले नाहक से रुके रहोगे। तुम पर फ़र्ज कर दिया गया कि जब तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता हो तो अपने माँ बाप और क़राबतदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर जाए। परहेजगारों पर यह हक और साबित है। अब जो शख्स इसे सुनने के बाद बदल दे, इसका गुनाह बदलने वाले पर ही होगा। वाकई ही अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। क्या पता चला? दो मारूफ चीजें इस हिस्से में डिस्कस हुई, किसास और उसके साथ दूसरा वसीयत। इस्लाम एक मुकम्मल पैकेज है, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। क्या पता चलता है कि दीन इस्लाम की हर चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, और जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को पढ़ते और सुनते जाते हैं उतना आपका दिल खुल जाता है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे पास एक मुकम्मल गाइडेंस है। जी, तदब्बुर और अमल, 177 से 181 आयात पर अमल कैसे करेंगे? अब देखिए कि इस आयत में मुख्तलिफ लोगों का जिक्र हुआ ना, रिश्तेदार भी हैं, यतीम भी, गरीब भी। इन सब लोगों को आप थोड़ा सा वक्त दीजिए। आपका मेरा अमल क्या है कि अपने रिश्तेदारों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, गरीबों को। अगर आप घर में कोई मेड आती, कभी बैठकर उसकी बात सुन लीजिए, हो सके तो कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दे दीजिए, रिश्तेदारों को देने का तस्करा है। 1 रियाल, 2 रियाल, 10 रियाल, कीमत ना देखा करें, प्यार के साथ किसी को दे दें। जिसको देंगे उसका दिल खुल जाएगा। फिर चूंकि नमाजों का जिक्र था तो नमाज पढ़ने के लिए जल्दी करनी है। अपने मर्दों को मस्जिदों में भेजें, और इस मुल्क में आकर सबसे ज्यादा जो आंखें ठंडी होती हैं ना, वो आप लोगों की मस्जिदें और मस्जिदों की हाजिरी को देख के होती हैं। कल भी मैं कहीं गई और हम सोच रहे थे कि औरतों का हिस्सा होगा, उसमें नहीं था। तो किसा मुझसे बाहर बच्चे थे छोटे छोटे खेल रहे ना, तो अजान हो रही थी, तो मैंने अक्सर फील किया कि बच्चे खेलते रहते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही उनको कहा कि सिल नमाज पढ़ने के लिए चलो, तो वो कह रहे ये हनम, तो सारे बच्चे विद इन फ्यू सेकंड मस्जिद में चले गए। तो मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा देखिए खामोशी से इन बच्चों को नमाज की आदत पड़ रही है ना, तो इस मुल्क में रहने की ये बरकतें हैं कि एटलीस्ट हमारे बच्चे नमाज हर जगह पढ़ने के आदी हो जाते हैं। फिर इसी तरह से तजुर्बाकार लोगों से मशवरा करके बिला ताखीर अपनी वसीयत लिखिए। अगर कुछ कहना है, अपने लिए दिए में से कुछ अल्लाह के रास्ते में देना है, किसी गरीब को देना है, तो एक रात ना आपकी ज़िंदगी की गुजरे कि आपने वसीयत ना लिखी हो। नहीं करनी, कुछ नहीं कहना, फितरी तौर पे जो आपकी शरई बांट है तो वो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़रूरी नहीं रुपये पैसे, कोई भी मामला आप चाहते हैं तो उसको लिख लीजिए। इसी तरह नेक अमाल को जानिए और दिल में बसाने के तरीक़ेकार ढूंढिए। देखिए उनकी खोज करें, छोड़ दें गुनाहों को, गलत चीज़ों, फैशनों को। आजकल क्या चल रहा है, आपके नेकियां चल रही हैं, आजकल अच्छे काम करने को दिल चाह रहा है। फिर इसी तरह मोमिन वादे का पक्का होता है, वादा खिलाफी नहीं करता। तो जब भी कभी किसी से कोई वादा किया हो तो उसको याद करें, पूरा नहीं किया तो उसे माजरत करें, और आइंदा के लिए लिख लें कि जो कहें उसको निभाएं। कमिटमेंट्स, प्लेजेस, हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में हम भूल जाते हैं। इसी तरह कसास माशरे की सलामती और क़ियामे अमन का सबब है। अरबी में एक कहावत है कि कसास मौत को रोक लेता है, यानी एक की जान जाएगी ना कसास में तो दूसरा खुद ब खुद उससे पीछे हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है क्या कि अगर मैंने इसको कत्ल किया तो बदले में मुझे भी होना होगा। तो अरब लोग एक कौल बोलते हैं, अलकत्लु अनफा लिल कत्ली, कत्ल करना ही कत्ल की रोकथाम का जरिया है। आज वह सारा परेशान है, डेथ पेनल्टी नहीं, नॉर्वे में कोई डेथ पेनल्टी नहीं, 70 बच्चों को भी शायद एक शख्स ने कत्ल कर दिया था, किसी जगह जाके कश्ती डुबो दी, लेकिन उसको भी नहीं मौत की सजा मिली। वो कहते हैं ये बर्बेरिक है। हालांकि आप देखिए सुकून इधर ज्यादा है या वेस्ट में, मैं आपको सच कह सकती हूँ मुसलमान मुल्क में ज्यादा सुकून होता है। आपके सऊदी अरब में भी क्यों सुकून है, क्योंकि सबको पता है कि अगर कुछ इधर की उधर की तो वो चीज़ें होंगी। तो इस्लाम पे अमल करना, इस्लाम पे ये लोगों को लेके चलना, ये माशरों में खैर लाता है। 40 दिन की बारिश से उतना सब्जा और हरियाली नहीं आती जितनी एक हद के कायम होने से लगती है। और लोगों को बताइए कि अल्लाह हकीम है, वो जो कवानीन देगा वो बिल्कुल दुरुस्त होंगे। फिर गौर व फिक्र के गोशे देख लेते हैं, कराबतदार और लोगों का तस्करा जिस तरतीब से किया गया, हमने भी इसी तरह से उनका ख्याल रखना है। माल की रग़बत रखते हुए अल्लाह की राह में खर्च करना ईमान की दलील है। कुछ लोग होते हैं उनको माल से मोहब्बत नहीं होती, खुला खर्च करते हैं, इधर फेंक उधर फेंक, उनको भी अजर मिलता है। लेकिन एक शख्स, उसको माल से प्यार बहुत है, जब वो निकाल कर कुछ देगा तो उसको ज्यादा अजर मिलेगा, यानी दिल पे चोट पड़ेगी। तो वो चीज दीजिए अल्लाह के रास्ते में जिससे दिल पे चोट पड़े, जो आपको पसंद भी बहुत हो। फिर सब्र के मुख्तलिफ दर्जे आते हैं। देखिए बीमारियों पे बंदा सब्र करता है, ये निस्बतन आसान है मोहताजियों पे सब्र करने से। मोहताजी पे सब्र करने से ज्यादा जिहाद में, अल्लाह के रास्ते की भाग दौड़ में सब्र है। जितना सब्र किया होगा, जितनी मुश्किल से आप गुजरे होंगे, अल्लाह ताला आपके लिए उतने वहाँ दर्जे भी बुलंद करेगा। फिर इसी तरह मुआफ़ी का यहाँ ताकीदी हुक्म है। तंग दस्त से दियत के मामले में सख्ती नहीं करनी चाहिए। तो आप भी किसी को माफ़ कीजिए, किसी ने सताया, किसी ने खपाया, किसी ने आपका कुछ ले लिया, किसी ने आपके खिलाफ कोई बात कह दी, सबको माफ़ कर दें, अल्लाह के लिए माफ़ कर। ये भी ना कहें कि अल्लाह पूछेगा, अल्लाह ने पूछा तो लक पता जाएगा। फिर इसी तरह वसीयत में रद्दो बदल करना, कुछ घटाना बढ़ाना, ये बहुत बड़ा गुना है। ऐसी चीजों से बचते रहिए और दूसरों को भी बचाते रहिए। आगे 182 से 186, फमन खाफ अमिन मूस इन जनफा, हाँ, जो शख्स वसीयत करने वाले की जानिबदारी या गुनाह की वसीयत कर देने से डरे, बस वो इनमें आपस में सुलह करा दे तो इन पर गुनाह नहीं, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अब आगे रोजों की बात, कितने लोग हैं जो रोजों के मुंतजर हैं? खुशी होती है रमजान का सोच के फिक्र खुशी होती है। चलिए तो फिर खुश होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे रखना फर्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। ये नोट कीजिएगा, इस साल के रमजान से तकवा लेना इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे देख रहा है। गिनती के चंद ही दिन है, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो वो और दिनों में गिनती को पूरा कर ले, और इसकी ताकत रखने वाले फिदिये में एक मिस्कीन को खाना दे। फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे वो उसी के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोजे रखना ही है अगर तुम इल्म वाले हो। शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, माह रमजान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है, जिसमें हिदायत की और हक को बातिल की तमीज़ की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए से रोजा रखना चाहिए, हाँ जो बीमार हो या मुसाफिर हो इसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पर इसकी बड़ाइयां बयान करो और इसका शुक्र अदा करो। अब देखिए रोजों की जिक्र है ना, तो क्या कहा, अय्याम मादूदात, दिनों का लफ्ज बोला। ये नहीं कहा कि एक महीना ही है, शहर नहीं बोला, महीना नहीं बोला, दिन बोले हैं। क्यों बोला? छोटा करके बताया। देखिए आपको पता है ना, किसी को आप कहे ना एक महीना तो जिन भाई एक महीने की कमिटमेंट, और अगर आप महीने की बजाय कह देते हैं 80 आवर्स, अच्छा चंद घंटे ही है ना। अल्लाह ने यह इंसानी नफ्सियात का ख्याल रखा है कि चंद दिनों की बात है। अगर रोज़ा मुश्किल लगा तो कह देना चंद दिनों की बात है। अब रोज़ा हो गया, कुरान हो गया, तो तीसरी चीज़, वह इज़ा सअल कई बादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दीजिए कि मैं बहुत करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब कभी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही इनकी भलाई का बायस है। अल्लाह सुबहान तआला बंदे की शाहरग से करीब है, हर पुकारने वाले की पुकार सुनता है। दुनिया में जितने बड़े लोग होते हैं उतने लोगों से दूर हो जाते हैं, अप्रोचेबल नहीं रहते, बीच में उनके सबके लाख के होते, नहीं नहीं आप नहीं बात कर सकते, आप नहीं अप्रोच कर सकते। सब बड़ों से बड़ा मालिक आपको मुझे दावत देता है कि मैं करीब हूँ, मुझे पुकारो। शिर्क का कला कमा करती है यार। 2 साल पहले के रमजान का जो जादुल खैर था, उसमें हमने फनी करीब इसे एक आयत की इन डेप्थ स्टडी की थी। अगर आपको मिल जाए ऑनलाइन पे जाकर खोल ले प्ले लिस्टों में और उसमें से इसको सुन ले, दुआ का मौजू था, तो आपका दिल खुल जाएगा। इस एक आयत में कोई 10 से 12 नुक्ते हैं जिसको मैं बयान करूं तो आपका दिल मानने लगेगा कि दुआ बेहतरीन इबादत है। अल्लाह दूर नहीं है, अल्लाह करीब है। अल्लाह कहते हैं मैं सुनता हूँ, सबकी सुनता हूँ। तो अभी इस वक्त हम सिर्फ तदब्बुर करेंगे आयत 182 से 186 तक। दो मुखालिफ गिरोहों के दरमियान सुलह कराइए, यहाँ सुलह की बात है ना। सोचिए, देखिए आपके खानदान में किन दो बहनों की लड़ाई है, एक को दूसरी से, दूसरी को एक के करीब कीजिए, तारीफ कीजिए, एक को दूसरी की तरफ से गिफ्ट दे दीजिए। शोहर बीवी में झगड़ा है, आपको पता है कि उसमें तो थोड़ी सी बात अगर तौरिया वाली भी इख्तियार कर ली जाए तो कोई बुरी बात नहीं होती, तो किसी के अंदर सुलह कराए। इसी तरह रोजे की बात है, फर्ज रोजे तो हमने रख ही लेने हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि पूरे रखें, लेकिन आम दिनों में हर महीने में एटलीस्ट 3 सुन्नत रोजों का एहतमाम कीजिए। शहवत दबेगी, नफ्स दबेगा, जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए अपने जिस्मानी तकाजों को दबाना आसान होगा, और नफ्स बहुत दबता है, निकाहत आती है, आजजी आती है, तो या में 20 के 3 रोजे रख लीजिए। आप में जिनके पिछले रोजे छुटे हुए हैं उनको पूरा कर लीजिए, क्योंकि जब साल गुजर जाएगा तो फिर साथ फिदिया भी देना पड़ता है। अपनी बेटियों के छुटे हुए रोजे आपके अपने रखिए, क्योंकि हमारे कल्चर में अमूमन लोगों को नहीं पता होता कि जो रोजे छूट जाते हैं उनको अदा करना होता है। इवन मैयत फौत कोई होता है उसके सर पे जो फर्ज रोजे थे वो भी रखे जाएंगे। इसी तरह अल्लाह ताला से आजजी और गिड़गड़ाकर दुआ करनी है। इसी तरह कुरान पाक से रहनुमाई कैसे लेनी है, तकवा और खौफ इलाही की तरबियत देना है और इस पर मदद करना रोज़ों की हिकमत है। यानी रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह और बंदे के बीच में एक रास होता है। कोई खाना नहीं खा रहा तो अब आपको ये तो दिख रहा है वो खा नहीं रहा, लेकिन ये तो नहीं पता उसका रोज़ा, क्योंकि नीयत अल्लाह को पता होती है। तो रोज़े से आपने मैंने अपने अंदर ये फीलिंग लेकर आनी है कि मुझे दूसरों से ज़्यादा अल्लाह की नज़रों में सच्चा बनना है। फिर फ़र्ज़ रोज़े हों या नफिल, इनमें मोमिन के लिए खैर है। इस यकीन को आम कीजिए। हिदायत और रहनुमाई दुआ से हासिल होती है। फिर गौर व फिक्र की बात क्या है कि मोमिनों की दुआ रद्द नहीं होती, अलबत्त कबूल होने की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। इसलिए कभी ये मत कहिएगा कि अल्लाह मेरी नहीं सुनता। आपकी रब सुनता है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। कभी कोई मुश्किल टल जाती है, आखिरत की मुसीबत टल जाएगी, कभी वो भी चीज़ मिलती है। हम जो चीज़ मांगे वो मिल जाए तो हम क्या कहते हैं, ये सबसे अच्छा दर्जा है। हालांकि सबसे अच्छा दर्जा क्या होता है, आखिरत के लिए रख दिया। इसी तरह से रोज़ों की आयतों के दरमियान में दुआ की आयत क्यों आई, इस हिकमत पर गौर कीजिए। रोज़े के साथ बंदे में एक स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाता है। फिर रोज़ा गुनाहों की जड़ यानी शहवत को बांझ बना देता है। ये जम है इस पारे का। रोज़ा गुनाहों की जड़ यानी शहवत को बांझ बना देता है। लस्ट ख़त्म होती है और जब बांझ हो गई तो फिर इंसान गुनाहों से दिन ब दिन दूर होने लगता है। इसी तरह रोज़ा दूसरी इबादत से ख़ास किस तरह है कि इसका अजर अल्लाह ताला खुद देंगे। बाकी अमाल का अजर अल्लाह ताला ने बता दिया, लेकिन रोज़े के लिए क्या कहा, अस्सौमु ली व नाजी भी, रोज़ा मेरे लिए मैं उसका अजर दूंगा, बल्कि बाज़ लोगों ने कहा मैं ही उसका अजर हूँ, यानी अल्लाह उसको अपना कुर्ब दे देते हैं। आयत नंबर 187 से 190। उहिल्ल लकुम लैलत सियामिर रफसु इला निसाइकुम हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अब यहाँ से आगे मुस्तकिल रोज़े और एतिकाफ और इसी तरह के मुख्तलिफ मसाइल है, और अच्छी बात है कि रमज़ान से पहले हम इन चीज़ों की दोहराई कर लेंगे। रोज़े की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया, वो तुम्हारा लिबास है और तुम इनका लिबास हो। तुम्हारी पोशीदा खियानतों का अल्लाह ताला को इल्म है, इसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा कर तुमसे दरगुजर फरमाया। अब तुम्हें इनसे मुबाशरत की और अल्लाह ताला की लिखी हुई चीज़ की तलाश करने की इजाज़त है। तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा स्याह धागे से जाहिर हो जाए, फिर रात तक रोज़े को पूरा करो और औरतों से इस वक्त मुबाशरत ना करो जबकि तुम मस्जिदों में इतिकाफ़ में हो। ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं, तुम इनके करीब भी ना जाओ। इस तरह अल्लाह ताला अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमाता है ताकि वो बचें। कितने निजी मामलात अल्लाह ने कुरान में पेश कर दिए। इससे क्या पता चलता है कि कुरान एक अमल की किताब है। अगर ये सिर्फ पढ़ने की बात होती वर्सेस टू रीड होती तो फिर ऐसी आयतों की ज़रूरत नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि हमें अपनी ज़िंदगियों में कुरान पाक को लाना है और इसके लिए हमें इसको समझना है। यहाँ देखिए कि 187 में औरत और मर्द यानी शोहर और बीवी के रिश्ते को हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन के साथ अल्लाह ताला ने पेश किया। देखा जाए तो लिबास और जिस्म लाजिम मलजूम है। लिबास और जिस्म के दरमियान कोई आड़ नहीं होती, शोहर और बीवी के बीच में भी कोई आड़ नहीं होती। लिबास सर्दी गर्मी से बचाता है, इसी तरह शोहर और बीवी को दुख सुख के वक्त एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लिबास इंसान के कद कामत के मुताबिक सजता है, इसी तरह शोहर बीवी के रिश्ते में भी कफ होना चाहिए। एक दूसरे के साथ खुश होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ देखकर दूसरे भी खुश होते हैं। लिबास इंसान की इज्जत और वकार की निशानी है। तो बिल्कुल शोहर बीवी के रिश्ते को इस तरह करके तो अल्लाह ने मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत जुमला बोल दिया। कितना रोमांस, कितनी लोग फिक्शन की बातें और शोहर बीवी के लिए कर दें, लेकिन ये जुमला उससे भी खूबसूरत है। लिबास जिस्म के ऐब छुपाता है, तो शोहर और बीवी को एक दूसरे के ऐब छुपाने चाहिए। यहाँ ज़रा सा गौर करते हैं, क्या मैं अपने शोहर की बातों को दूसरों से शेयर तो नहीं करती? और शोहर जो होंगे वो क्या पूछेंगे अपने आप से, क्या मैं अपनी बीवी के ऐब दूसरों के सामने तो नहीं खोलता? असल तो कुरान ये सिखाता है आपको,